ఓం శాంతి. హమ్ సబ్ బహుత్ లకీ హై యేసా సమజ్ రహే హై, జో సమజ్తే వో ఏక హాత్ ఉఠాయేంగే. హమ్ సబ్ బహుత్ లకీ హై, బహుత్ శ్రేష్ఠ ప్లేస్ మే హమ్ పహుంచే హై, బహుత్ పవిత్ర ప్లేస్ పే పహుంచే హై. కరోడో మనుష్య హై సంసార మే, లేకిన్ పరమాత్మా కే ఘర్ మే గుమ్ కే జానా భీ బహుత్ కిసి జన్మ కే పుణ్య కా ఫల హై. ఐసా కిస్ కిస్ కో ఫీల్ నహీ హోతా హై వో హాత్ ఉఠాయేంగే. తో సబ్కో ఫీల్ హోతా, అప్నే లియే తాలీ బజాయేంగే. హమ్ కల్ సే ఆప్కో అబ్జర్వ్ కర్ రహే హై, బడే ప్యార్ సే ఆప్ సిర్ఫ్ సున్ నహీ రహే హై, బహుత్ అటెన్షన్ సే అటెండ్ కర్ రహే హై. సెషన్స్ తో బహుత్ అచ్చే చల్ రహే హై, లేకిన్ విశేష ఆప్కో ఆప్కీ నీంద కో భీ త్యాగ్ కర్వా కే హమ్నే ఆప్కో యహాన్ ఇస్లియే బులాయా హై, క్యూంకి ఆప్ విశేష మే భీ విశేష ఆత్మాయే హై. తో సబ్సే పహలే హమ్ చాహేంగే, క్యూంకి హమారే బడే స్టేజ్ పే బైఠే హై హమారే చైర్పర్సన్ సలా దీదీ ఔర్ వైస్ చైర్పర్సన్ హమారే రాజూ భాయి ఔర్ హమారే నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ తృప్తి బేన్, హమ్ చాహేంగే కి ఇన్కో ఆప్కా పర్సనల్ పరిచయ థోడా, కౌన్ కహాన్ సే ఆయే హై ఔర్ క్యా కర్తే హై, బస్ ఇత్నా దో, కౌన్ కిస్ షహర్ సే ఆయే హై, ఆప్కా ప్రొఫెషన్, యే దో శబ్ద అగర్ ఆప్ పరిచయ మే దే దేంగే తో ఏక్ 10 మినిట్ మే హమ్ పహలే ఏక్ దూసరే సే వాకిఫ్ హో జాయేంగే. తో భాయి సాహబ్ దేంగే ఆప్ సబ్కో మైక్ దేంగే, హ్యాండ్ మైక్ నహీ తో బద్రీ భాయి యహీ.
ఓం శాంతి. మే జితేంద్ర కుమార్ ఫరీదాబాద్ శహర్ సే హర్యానా సే ఆయా హూ ఔర్ హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ మే హూ. అభి ఫిల్హాల్ సీయూ జిల్లా పరిషద్ అండ్ డిఆర్డిఏ కి పోస్ట్ పర్ మే కార్యరత్ హూ. ఇసే పహలే ఎస్డిఎం ఫరీదాబాద్ ఔర్ ఎస్డిఎం పల్వల్ మే మే సేవాయే దే చుకా చూ. ధన్యవాద్.
ఓం శాంతి. మే ప్రొఫెసర్ సునీతా పాండే, జీబీ పంత్ యూనివర్సిటీ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ సే ఉత్తరాఖండ్ సే మే ఆయీ హూ ఔర్ 2008 సే బాబా కే ఘర్ సే జుడీ హుయీ హూ ఔర్ శాశ్వత యోగిక్ ఖేతీ పర్ రిసర్చెస్ భీ కరాయీ హై ఔర్ ఇస్ సమయ విశేష నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఔర్ వృక్ష ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మింగ్ మేరా రిసర్చ్ డొమైన్ హై ఔర్ శాశ్వత యోగిక్ కా తో కామ్ చల్తా రహతా హై. ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. మై నేమ్ ఇస్ పుట్టస్వామి ఫ్రమ్ కర్ణాటక స్టేట్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఇన్ హాసన్ డిస్ట్రిక్ట్ చంద్రాయపట్న తాలూకా సార్.
ఓం శాంతి. మేరా నామ్ డాక్టర్ అనూప్ కుమార్ హై. మే సీనియర్ సైంటిస్ట్ అండ్ హెడ్ కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర హనుమాన్గఢ్ ఫస్ట్ మే కామ్ కర్ రహా హూ. అభీ పిచ్లే 2 సాల్ సే హమ్ లోగ్ ప్రాకృతిక్ ఖేతీ కి శురువాత్ కియే హై ఔర్ అబ్ చూంకి బ్రహ్మ కుమారీ కే ద్వారా యహాన్ యోగిక్ ఖేతీ కి శురువాత్ హమే సౌభాగ్య మిలా ఇస్ సీఖనే కా, తో ఇస్ ప్రాకృతిక్ ఖేతీ కే సాథ్ హమ్ యోగిక్ ఖేతీ భీ అప్నాయేంగే, జిస్సే కి హమారే కిసాన్ భాయ్యో కో లాభ్ మిలే ఔర్ ఇస్కే అలావా జో ICAR కే మెండేట్ హై ఉన్కో సబ్ కో ఫాలో కర్తే హువే హమ్ కిసానో కి సేవా మే సమర్పిత హై. ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. మే డాక్టర్ పంకజ్ త్రిపాఠి, నిదేశక్ రాజ్య కృషి ప్రబంధ సంస్థాన్ లక్నో ఉత్తరప్రదేశ్ హూ. మే సంస్థాన్ పర్ కృషకో కృషక్ హమారే క్షేత్ర ప్రసార కార్యకర్తాఓ అధికారియో కే తకనీకీ ఔర్ విభిన్న ప్రకార కే ప్రశిక్షణ ఆయోజిత్ హో రహే హై, జిస్ పర్ హమ్ లోగో నే పిచ్లే అభీ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పర్ భీ ట్రైనింగ్స్ కరాయి హై. అభీ ఆప్కీ సంస్థా కా ఏక్ కార్యక్రమ భీ హమ్ లోగో నే ఆయోజిత్ కియా థా, జబ్ గ్రామ వికాస్ కా ఆప్కా ప్రారంభ హువా థా మేలా, తో ఉస్కో రవానా కియా గయా థా హమారే సంస్థాన్ సే ఔర్ శ్రీ బద్రి విశాల్ తివారీ జీ కే మాధ్యమ సే హమ్ లోగో నే ఇస్కో ప్లాన్ భీ కియా హై కి శాశ్వత ఖేతీ కా ఏక్ మోడల్ వహాన్ పర్ వికసిత్ కియా జాయే. ధన్యవాద్.
ఓం శాంతి. మే డాక్టర్ జితేంద్ర కుమార్ తోమర్, ప్రబంధ నిదేశక్ ఉత్తర ప్రదేశ్ బీజ వికాస్ నిగమ్ లక్నో మే తైనాత్ హూ. ఇస్ సమయ హమ్ లోగ్ पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बीज की व्यवस्था का कार्य देख रहे हैं और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उसमें बीजों की व्यवस्था का दायित्व उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का है। मैं 4 वर्ष पहले भी शांतिवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे सहभागिता कर चुका हूँ और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हम लोगों को जो भी यहाँ पर सीखने का और देखने का मौका मिल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मैं वीरेंद्र सिसोदिया, मैं लखनऊ में कृषि निदेशालय में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। प्रदेश में मृदा एवं जल संरक्षण से जो योजनाएं संचालित होती हैं उनको मैं वहां से संचालित कराता हूँ। उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण के क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल में लगभग 32,000 तालाबों का निर्माण कराया है जिसमें किसान अपनी वर्षा का पानी इकट्ठा करके विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी ग्वालियर और झांसी एरिया में और रबी की फसलों में सिंचाई करते हैं जहां नमी संरक्षण भी हो रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। ओम शांति।
ओम शांति। मैं डॉक्टर पी के कनौजिया राज्य कृषि प्रबंध संस्थान लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं 5 जिलों में जिला कृषि अधिकारी और 4 जिलों में उप कृषि निदेशक के रूप में कार्य कर चुका हूँ।
ओम शांति। मैं विजय कुमार सिंह सह प्राध्यापक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ में कार्यरत हूँ और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने हमारे बताया कि हम लोग प्रशिक्षण विभिन्न जो हमारे लाभार्थी हैं कृषक हैं अधिकारी हैं अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग आयोजित करते हैं और मॉडल विभिन्न कार्यक्रमों को डेवलप करते हैं।
ओम शांति। डॉक्टर आर एन ठाकुर रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश और NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में काम कर रहा हूँ।
ओम शांति। माई सेल्फ डॉक्टर गुलाब सिंह कृषि विकास अधिकारी पीपली कुरुक्षेत्र हरियाणा। हम कुरुक्षेत्र में ही गुरुकुल में आचार्य देवर जी राज्यपाल गुजरात के दिशा निर्देश से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं और अबाउट 10 स्टेटों के किसान साइंटिस्ट एंड अदर्स डिपार्टमेंट्स हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेट्स को ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं और लगभग 200 एकड़ का फार्म नेचुरल फार्मिंग का गुरुकुल इन कुरुक्षेत्र में ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है।
मैं डॉक्टर देशपाल सिंह बालियान अभी कुछ समय पहले रिटायर हुआ हूँ, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी अम्बाला से रहता हूँ कुरुक्षेत्र। अब भी मैं किसानों के बीच में जाकर जो है कम से कम मुझे जानते हैं अम्बाला कुरुक्षेत्र के तो सबको जो है किसान जितने भी जानकार है उनको एक करनाल जगह छटवाता हूँ उनकी मोटर वगैरह पे भाई अपनी सीजनली खेती वगैरह या अपनी जो क्रॉप्स होती है ये वेजिटेबल होती है ये लगाओ तुम्हें काम मिलेगा। तो कहीं पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ गड्ढे खुदवा देता हूँ पर्सनली तौर से कर लेता हूँ मैं तो अब जो क्योंकि मुझे अम्बाला कुरुक्षेत्र और जो है ये सभी में नौकरी की है एक सहायक विकास अधिकारी और ब्लॉक अफसर रहा हूँ शाहबाद में तो अभी ये प्राइवेट जाकर जो है अपने काम करा लेता हूँ। धन्यवाद जी।
ओम शांति। आप लोग सब डेफिनेटली अपने अपने पोजीशन पे अपने अपने कार्य में हैं और जरूर कुछ न कुछ तो जरूर देश के लिए कर रहे हैं इसमें हमको कोई शक भी नहीं है क्योंकि बहुत जने हम लोग हैं और बहुत सी बातें आपके साथ करनी है बहुत से प्लानिंग करनी आपके साथ तो कृपया थोड़ा शॉर्ट में परिचय देंगे तो वील बी थैंकफुल टू यू प्लीज।
ओम शांति। मैं डॉक्टर LV यादव डिप्टी एग्रीकल्चर चित्रकूट मंडल।
ओम शांति। मेरा नाम अम्बरीश शुक्ला है मैं निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा के उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
ओम शांति। मेरा नाम विवेक कुमार है मैं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रसीमा रहमानखेड़ा मैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पद पर कार्यरत हूँ।
ओम शांति। मैं JP गंगवार उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में फार्म मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ।
ओम शांति। मैं सत्येंद्र कुमार तिवारी वर्तमान में प्रक्षेत्र प्रबंधक कटियार लखनऊ में कार्यरत हूँ।
ओम शांति। मैं डॉक्टर रामतेज यादव फार्म मैनेजर रहीमाबाद लखनऊ।
ओम शांति। ओम प्रकाश मिश्र जिला कृषि अधिकारी अयोध्या कृषि विभाग से।
ओम शांति। डॉक्टर एस एम मेहता, कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू से मुख्य वैज्ञानिक एंड अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो
चुका। ओम शांति। ब्रजमोहन शर्मा, भूमि विकास बैंक में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले 3 साल में मार्केटिंग मैनेजर भी रहा टोंक।
ओम शांति। मैं केदार मधु शर्मा, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर टोंक। अभी मैं पर्सनल बायो एग्रीकल्चर का फार्म पे काम करता हूँ। धन्यवाद।
ओम शांति। मैं डॉक्टर जगत सिंह मलिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक में कार्यरत।
ओम शांति। मैं पोरबंदर गुजरात से साजन भाई ओडेदरा, हमारी मेयर कम्युनिटी से हमारी किसान पांख है उसका हूँ प्रेजेंटेशन करता हूँ। मैं उसकी पांख का मैं प्रेसिडेंट हूँ।
ओम शांति। मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से सोनू मंगल, सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर।
ओम शांति। मैं अभिषेक चंद्रा, कृषि विभाग से उत्तर प्रदेश, SDIO जालौन।
ओम शांति। मैं डॉक्टर शारण नागपाल, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से PhD माइक्रोबायोलॉजी, और इस वक्त मैं PAU में ही SRF की नौकरी पे हूँ।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम डॉक्टर पूनम शर्मा, प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कम इंचार्ज पल्से सेक्शन, PAU लुधियाना, और मैं 2018 से बाबा का बच्चा हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। मैं डॉक्टर सुशील प्रभाकर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से नहीं लेकिन अलाइड प्रोफेशन पशु चिकित्सा और एनिमल साइंसेज से जुड़ा रहा हूँ, और मैं प्रोफेसर के पोस्ट से लास्ट ईयर ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
ओम शांति। मैं डॉक्टर रामगोपाल जाट, एक्स प्रोफेसर एंड हेड प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, पिछले 7 साल से ज्ञान में हूँ, और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के साथ हम एनुअल मीटिंग भी किसानों को नेचुरल फार्मिंग के साथ योगिक फार्मिंग भी साथ साथ करें तो उसका सहयोग कर रहे हैं।
ओम शांति। मैं डॉक्टर पूनम चौधरी, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे पोस्टेड।
ओम शांति। मैं महेश पुराड़े फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, CEO एंड डायरेक्टर ऑफ FPO, हम मेडिसिनल प्लांट्स में काम कर रहे हैं।
ओम शांति। मैं डॉक्टर दलवीर सिंह, वेटरनरी सर्जन जींद से, हरियाणा से।
ओम शांति। मैं RP डिडेल, डिप्टी डायरेक्टर सी सर्टिफिकेशन और इंचार्ज STL दुर्गापुरा जयपुर।
ओम शांति। मैं डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा गुजरात सरकार में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा में प्राकृतिक खेती का व्याप बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
मैं सर विष्णु पटेल फ्रॉम APRO गुजरात, वर्किंग फॉर बेटर कॉटन इनिशिएटिव इंटरनेशनल प्रोग्राम।
ओम शांति। मेरा नाम महेश प्रताप सिंह बुंदेला है, मैं उपसंचालक उद्यान डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश में काम करता हूँ। मैं एक मिनट में बोलना चाहूंगा कि मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट बना रहा था, तो आपकी दीदी मेरे पास मिलने आई, उन्होंने बताया कि ये शाश्वत खेती के बारे में, तो मैंने उसको प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को भेजा और सेंक्शन हो गया। तो एक बड़ा हमें आपके के प्रयास से हुआ। इस साल हम 1000 एकड़ में इसको कर रहे हैं और पूरा प्रमाणीकरण के साथ मार्केट लिंकेज 100% उनका बाजार उपलब्ध कराना सारा उसके अंदर समावेश है। एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ ग्वालियर में भी। ओम शांति। ग्वालियर से है मैम, अभी हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट 50 करोड़ का सेंक्शन हुआ है, उसमें एक बड़ा विषय ये भी है जिसमें हमको शाश्वत खेती और खेती करना है।
ओम शांति। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार बिसेन, राइस ब्रीडर हूँ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाघाट मध्य प्रदेश।
ओम शांति। मैं डॉक्टर RL राउत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ।
मनोहर लाल शर्मा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट अटल भूजल योजना पलवल से।
मैं चंद्रसेन भोसले डायरेक्टर पायलट एग्रो, मैं एक गोल लेके काम कर रहा हूँ जिसमें मैं कम लागत में ज्यादा उपज कैसा है इस पे हम काम कर रहे हैं। सातारा।
ओम शांति। मैं डॉक्टर मुकेश आर पटेल आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद से एसोसिएट एक्सटेंशन एजुकेशन तरीके।
मैं प्रोफेसर कनुभाई पटेल फ्रॉम मक्का संशोधन केंद्र गोधरा गुजरात से। मैं पिछले 27 साल से बाबा का बच्चा हूं और मैंने यौगिक खेती पर 2019-20 में मक्का पे एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल फर्टिलाइजर के साथ यौगिक खेती का, तो उसमें एट पार रिजल्ट मिला है और आई हैव सबमिटेड द रिजल्ट टू बीके सुमंत भाई जी।
नमस्ते। आई एम हितेश साणजा वर्किंग एज सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन गुजरात गवर्नमेंट। माई ऑफिस एट राजकोट बेस्ड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी।
ओम शांति। संजय दलसाणिया असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट मोरबी गुजरात।
ओम शांति। समीर ओडारिया असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर राजकोट।
ओम शांति। नीलेश कामरिया असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर राजकोट डिवीजन राजकोट।
ओम शांति। मैं डॉक्टर संजय पाटिल परभणी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। मैं सिट्रस रिसर्च सेंटर का इंचार्ज हूँ और सिट्रस में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं।
ओम शांति। मैं पंडित बरदारी, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हूँ। पिछले 30 साल से एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट में काम किया है। थैंक यू।
ओम शांति। मैं नाबार्ड बैंक में जनरल मैनेजर के रूप में रहा। भारत और जर्मनी के एक जॉइंट वेंचर था इंडो जर्मन वाटरशेड, उसका चीफ रहा और भारत के करीब 5 राज्यों में सेवाएं दी और करीब 27 ईयर्स से विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। यहाँ की जो शिक्षाएं है उसको बहुत सारे FPO से लेकर किसान के उत्थानों में यूज़ किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए भारत सरकार ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिए, एकोलेट्स भी दिए और ऑफ लेट 2 यूनाइटेड नेशन की इवेंट में भी एज ए स्पीकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्ट लिया और पिछले कुछ समय से VRS लेकर अपना ही एक बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसके माध्यम से हम लोग किसानों के सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लेते हैं और बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज और रिजल्ट्स बने हैं। थैंक यू।
ओम शांति। बीके विठल भाई पुणे से, रिटायर्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल सर्विस, सॉइल टेस्टिंग और एक्सटेंशन में पूरा सर्विस हुआ है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा के रूप में हम रिटायर हुए।
अच्छा।
ओम शांति। प्रीति हिरोलकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा चंद्रपुर महाराष्ट्र से आए हूँ।
ओम शांति। बद्री विशाल तिवारी लखनऊ से हूँ। कल आप लोगों ने सुना है, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है।
ओम शांति। मैं डॉक्टर प्रभा पाटिल वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी से वॉलंटरी रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। विमेन इन एग्रीकल्चर के ऊपर कभी 20 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है, बचतगढ़ से लेकर और अलग अलग एनवायरमेंटल सैनिटेशन के ऊपर बहुत सारे अभियान अबाउट 50 विलेजेस में मैंने किए।
ओम शांति, मैं आरपी शर्मा और अभी 31 जनवरी को एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद जैविक कृषि का अपना 11-10 एकड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, अभी इसी सेशन से शुरू कर दिया है और सेवा भाव से ही जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, यौगिक कृषि, कुछ भी इसको कह लीजिए, यह करने का इरादा है। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ बता दिया उन्होंने। थैंक यू, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छा परिचय दिया। अब यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक ऑफिशियल्स और एक साइंटिस्ट। तो जो इसमें साइंटिस्ट हैं वो एक बार हाथ उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे एक बार प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। हम जिस प्लेस पे बैठे हैं वो परमात्मा का एक ऐसा सुंदर स्थान है और ये हेडक्वार्टर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। अगर पानी सर पे लगाएंगे ना तो पूरे शरीर में अपने आप ही चले जाता है, खाली पैर में लगाएंगे तो पैर पे ही गिरेगा, लेकिन सर में लगाएं तो ऑटोमेटिकली सबको मिलेगा। तो परमात्मा ने आपको अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है, अब यहां से आपको सारे देश को खुशहाल बनाना है। आपको नहीं लगता है कि हमारा देश जो बहुत प्राचीन है और बहुत बहुत सुने हम लोग कृषि ऋषि कर सकते हैं, तो जो ऋषियों का देश था, जो दैवी गुणों वाले मनुष्यों का देश था, जो सोने की नगरी था, कहते ना जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, जहां धरती क्या उगले सोना उगले। अभी सोना उगल रही है, केमिकल उगल रही है, ये हम सब जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऐसे आज दोपहर में ऐसा बैठी थी तो मुझे सडनली एक विजन क्रिएट हुआ, जैसे नॉट लाइक अ ट्रांस बट समाउ। तो मुझे लगा कि हमारा जो ये कृषि विभाग है, ये जो अपना एग्रीकल्चर एंड रूरल विंग जो हमारा विंग है, आपको मालूम है 20 विंग है ब्रह्मा कुमारी इसके, आप नीचे उत्तर से देखेंगे तो भी आपको 20 विंग दिखी होगी। उसके जो हमारे बड़े हैं, आपको मालूम है, परिचय देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो मुझे सरला दीदी याद आई, तो चेयरपर्सन है हमारी, तो मुझे चेयर दिखाई दिया और हमारे राजू भाई उसके वाइस चेयरपर्सन। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, सोचते हैं कई लोग कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में खाली ब्रह्मा कुमारियां ही जा सकती, अर्थात बहने ही जा सकती हैं, शायद भाई नहीं जा सकते, ऐसा भी कईयों को लगता है, तो ऐसा नहीं है, आपने यहाँ देखा होगा। तो हमारे वाइस चेयरपर्सन राजू भाई जी, मुझे ऐसा लगा जैसे उन चेयर के बैकबोन है वाइस चेयरपर्सन। और इस चेयर को एक पुष्पक विमान की तरह हमको उड़ाना है, तो चेयर के लिए चार पहिए चाहिए होते हैं, चार पिलर्स। अगर आपका एक भी पिलर थोड़ा ढीला है तो क्या होता, कमजोर है, या तो थोड़ा भी कटा हुआ है तो मजबूती नहीं रहती है। अगर सीट मजबूत है तो सेट होना बहुत इजी होता है। तो हमारे इस विंग के दो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे साथ बैठे हैं, हमारी सुनंदा दीदी और तृप्ति दीदी, और इसके दो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सुमंत भाई और हमारे शशिकांत भाई। सुमंत भाई, शशिकांत भाई कहाँ है, मैं समझती हूँ सब जानते होंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे प्लीज। तो मुझे ये चार जने ऐसे लगे कि चार उनके फाउंडेशन पिलर्स हैं। और हमारी सुनीता पांडे जी जो साइंटिस्ट विभाग से हैं, लौकिक से भी और भगवान को भी पहचानती हैं, ये हमारे शशिकांत भाई हैं और ये हमारे सुमंत भाई, ये दोनों हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ये चार पिलर इन दोनों के साथ हैं, तो इनकी चेयर तो बहुत मजबूत है ही, लेकिन अब इस चेयर को उड़ा के सारे दुनिया में इसकी सेवा करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि सुनीता पांडे जी ऐसे जो बाबा के साइंटिस्ट बच्चे हैं, वो एक साइड जो उनके विंग हैं, क्योंकि चेयर को उड़ाने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए ना, तो ये उनके पंख हैं, जिनकी इच्छा होती है कि इस चीज को उड़ा के हर जगह लेके जावें।
और एक पंख साइंटिस्ट हैं, एक पंख जैसे हमारे बद्री विशाल भाई हैं, हमारे राजेश दवे भाई हैं, ऐसे बहुत बहुत सुंदर आत्माएं हैं जो एक इस विंग का बहुत बड़ा पावरफुल विंग है, जिस विंग से ये बहुत समय से सेवाएं दे रहे हैं, कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनका नेचर देखती हूँ, इनकी मेहनत देखती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अपने मन से इनके लिए श्रद्धा पैदा होती है। अब हम ये चाहते हैं आज आपसे कि कौन कौन इस विंग में और मजबूती देना चाहता है, चाहे आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट के रूप में इस भारत को फिर से एक खुशहाल भारत, क्योंकि भारत से ही सारा विश्व खुशहाल बनने वाला है, भारत को इतना बड़ा पावर है। तो कौन कौन चाहता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस विंग्स को मजबूत करने में रहे? सभी चाहते हैं। एक्चुअली मुझे पूछना था कौन कौन नहीं चाहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है आपको। आप अपने लिए ही जोर से ताली बजाएंगे। फिर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत और बहुत से धन्यवाद है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि भाई साइंटिस्ट किस रूप में इसको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दीदी सुनीता बहन, थोड़ा आप इनको बताएंगे कि आप किस तरह से करें और वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
ओम शांति। प्रभाग में बढ़ती हुई वैज्ञानिकों की संख्या वास्तव में एक बहुत ही उत्साह उमंग का प्रतीक भी है, और जैसे बहन जी ने कहा अभी विंग्स, तो ऐसा लगता है कि जब इतने सारे साइंटिस्ट, क्योंकि विज्ञान वैज्ञानिक को ऋषि की संज्ञा दी गई है, ऋषि मुनि हमारे बड़े सिस्टमैटिक ढंग से किसी भी अध्ययन को करते थे और परोपकार के लिए करते थे, तो वो वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों को ऋषि की संज्ञा दी जाती है, उसमें उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते और उनके फाउंडेशन में बहुत ट्रुथफुलनेस होती है, तो उसको और एक सिस्टमैटिक स्टडी को विज्ञान कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे पास कई विषयों के, पूनम बहन बहुत अच्छी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना, तो इस प्रकार से अलग अलग विंग्स, अलग अलग सब्जेक्ट के वैज्ञानिक इसमें जुड़ रहे हैं। और शाश्वत यौगिक खेती, मुझे लगता है कि एक ऐसी विधा है जो अपने आप में, जैसे हम लोग आजकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इस विधि में, खेती की इस विधि में सारा इंटीग्रेशन है। बहुत तरीके की खेती होती है, हम लोग देख रहे हैं, चाहे उस रासायनिक खेती अपनी एक अलग विधा है ना, नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक में भी दो प्रकार हैं, एक तो जो हमारे वृक्ष आयुर्वेद आधारित ऑर्गेनिक नेचुरल, जो भी उसको शब्द दें, एक है हमारी मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके पिता हैं अल्बर्ट हावर्ड, वो भारतीय नहीं है, उनको फादर का दर्जा मिला हुआ है इस समय विश्व में, तो वो है हमारी इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कि वो विधियां हैं जो वेस्टर्नर्स द्वारा स्थापित किए गए मैंडेट के हिसाब से हैं, और वो लोग शायद हमारी विधियों को जानते नहीं थे और चित परिचित नहीं थे कि इतनी लो कॉस्ट भी हो सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसलिए उन्होंने जो भेजी आईफोम के द्वारा जो मैंडेट स्थापित किए, वो हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुई गवर्नमेंट के हजारों प्रयासों के बावजूद भी, क्योंकि वो केमिकल से भी महंगी थी और लॉन्ग रन में फायदेमंद भी नहीं थी, अगर हम क्लाइमेट चेंज और इसके आयामों को देखें तो वो सक्सेस नहीं हुई। तो इस दौरान में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आ गए, क्योंकि वैज्ञानिकों का थोड़ा स्केप्टिकल, जिसे कहते हैं ना, उनको पूरा संशय में ही थे वो। लेकिन अभी इस जो हमारी वर्तमान सरकार है, इसने जो आयाम दिया है नेचुरल खेती के माध्यम से, उसमें हमारी प्राचीन भारतीय खेती की तमाम पद्धतियां समाई हुई हैं। उसको हम नाम अब चाहे कुछ दे दें, नेचुरल कह रहा है कोई, ऑर्गेनिक कह रहा है कोई, वृक्षायुर्वेद, लेकिन वो सारा वृक्षायुर्वेद से आया हुआ है।
वो मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग की इसमें कम बात है जो अब आयाम शुरू हुआ है। मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि केमिकल से भी कई गुना महंगी होती है, वो आयाम इस वाले खेती में नहीं है जो हम आज विभिन्न नामों के जाल में फंसे हुए हैं। और उसमें हम एक बड़ा सा प्लस लगा दें तो वो शाश्वत यौगिक खेती होती है, क्योंकि वो आयाम और किसी खेती में नहीं है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि ये वैज्ञानिक जो जुड़ रहे हैं वो शाश्वत यौगिक खेती जो प्लस का निशान है उसकी सार्थकता को प्रमाणित करने में, क्योंकि उसमें बड़ा गहरा विज्ञान है और बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम की आवश्यकता है। हर एक का अपना एक लिमिटेशन है। जैसे मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूं तो हमने काम किया थोड़ा क्या, जितना भी हम कर सकते थे हमारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि वो हरित क्रांति की जननी रहा है और वहां का जो माइंडसेट है लोगों का वो अभी वही वेस्टर्नर वाला है। 174 फैकल्टी है केवल हमारे कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में 174 फैकल्टी है। उसमें से मैं समझती हूं अभी मैंने कुछ 10-12 की टीम अपनी तैयार करी है। तो उसके अलावे अगर मैं पूछूं आज की हमारे जो 3-4 विजनरीज एग्रीकल्चर के रहे ऋषि मुनि, उनका नाम बताओ, तो मुझे नहीं लगता कि 1% या 2% लोग भी बता पाएंगे। तो दे आर सो स्केप्टिकल एंड अनअवेयर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब नेचुरल फार्मिंग का सिलेबस नेशनल की जो ICAR की जो टीम थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की 8 मेंबरान की टीम थी, उसमें एक मैं भी एक मेंबर थी, तो वो काम पूरा होके और अप्रूवल हो चुका है। उसका जो सिलेबस है वो अप्रूव हो चुका है और आप सभी के जो भी कृषि विश्वविद्यालयों से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से जो लोग यहां पर आए हैं उनको इस बात का मुझे लगता है संज्ञान होगा कि ICAR से ऑर्डर्स हमारे विश्वविद्यालय में आ चुके हैं और उसकी कॉपी मैंने देखी है सभी विश्वविद्यालयों को गई है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, कि आपको अगले एकेडमिक सेशन से ये कोर्स चालू करना है। तो अब करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का मुखिया और पूरा शासन प्रशासन और उसमें इस विधा में लगे हुए लोग ये सब चाहते हैं कि ऐसा हो। तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी वो ऑर्डर हो चुका है। तो ऐसे में आप लोगों के पास जो हमारे शाश्वत यौगिक खेती करने वाले यहां वैज्ञानिक बैठे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो नेचुरल को नेचुरल प्लस या ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक प्लस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब माइंडसेट उनका भले ये भी हुआ है कि अगर जहां टीचर्स नहीं होंगे तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। जैसे मान लो हमारे यहां 3 टीचर हैं, बिहार में 2 हैं, कहीं 4 हैं, भी टीचर्स की भी कमी है, किताबें भी निकलेंगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ये ऑनलाइन वाला मोड जो कोरोना काल में हम लोगों ने यूज किया, वैसे भी क्लासेस लगाने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन होना पड़ेगा इस एकेडमिक सेशन से। आप लोगों की पता नहीं यूनिवर्सिटी में ऑर्डर आए, आपको अंदाज है इस बात का? हमारे यहां आए हैं ना मैडम? हाँ, तो सभी विश्वविद्यालयों में ये ऑर्डर जा चुका है ICAR से, और वो करना ही पड़ेगा बस, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ स्टेट। तो हर स्टेट को एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है 25% की, कि वो अपने हिसाब से उस सिलेबस को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एकेडमिक काउंसिल में ले जाकर के। तो वो 20-25% मॉडिफाई करेंगे, और करना भी चाहिए अपनी स्टेट की आवश्यकताओं को देखते हुए, वहां की क्रॉप्स की, वहां की जलवायु की, वहां की मिट्टी को देखते हुए, वहां का बिजनेस मॉडल देखते हुए वो करना भी चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत करना पड़ेगा। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा, इसमें डिप्लोमा कोर्स भी होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होगी इसमें। तो हर प्रकार का ये इस समय एक बहुत अच्छा मौका है कि जो हम शाश्वत यौगिक खेती को इसमें डवटेल कर सकते हैं, क्योंकि इजी हो जाएंगी चीजें। नहीं तो अभी प्रकृति की सोचने में वैज्ञानिकों के हमारे यहां तो बहुत पसीने छूटते हैं। तो एक अच्छा मौका है, मेरे को बहुत खुशी है कि विंग में हमारे कई प्रकार के, एक हमारे भाई आए हैं आंध्रा से, आ गए वो इधर, हाँ ये हमारे बहुत काम के भाई हैं शाश्वत यौगिक खेती के लिए भी। ही इज वर्किंग ऑन जीनोमिक्स। तो मैंने अभी इनसे बात किया, जीनोमिक्स पर पता नहीं पूनम बहन आप काम कर रहे हो कि नहीं, जीनोमिक्स पर आप नहीं कर रहे, बट ही इज वर्किंग ऑन जीनोमिक्स जिसकी बहुत जरूरत है। तो ऐसे अच्छे अच्छे भाई जुड़ रहे हैं।
फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना,
तिरुपति,
तिरुपति, आई एम फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद।
बहुत ही फाइन साइंटिस्ट, मैंने अभी इनको जब हम वहां पर जानकी दादी पार्क में गए तो वहां पर मुलाकात हुआ, बातचीत हुई, तो फाइन साइंटिस्ट, शार्प ब्रेन। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट विंग को बाबा दे रहा है क्योंकि वो समय आया है, बाबा भी समय अनुसार।
इसमें साइंटिस्ट हैं, एक बार हाथ उठाइए सिस्टर, क्योंकि इनका फेस इधर था ना, साइंटिस्ट जो है।
हाँ, एक बार ही फिर से हाथ उठाएंगे साइंटिस्ट, फिर से हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सभी विंग से जुड़ के रहना है क्योंकि विंग को उड़ाना है ना, इसलिए। तो बाकी जो भी क्वेरीज होंगी, हमारे दीदी लोग हैं यहाँ, बहन जी हैं, राजू भाई हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है और हर प्रकार का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है विंग से। अगर आपकी 2 किलोमीटर की गति है तो आप विंग के प्लेटफॉर्म से 10 times, 20 times उसको बढ़ा सकते हैं। विंग इतना मोटिवेशन और इतने प्लेटफॉर्म आपको देगा। परंतु मेरी बहुत विनती भी है सभी से कि प्लीज इस टाइम की नजाकत को पहचानते हुए जरूर इसमें हमें रिसर्च को एक नया आधार देना है। थैंक यू।
मेरे मन का ये संकल्प है दीदी कि जो भी साइंटिस्ट भाई हैं यहाँ पे, भाई और बहने, तो एक 10 मिनट आफ्टर क्लास इनके साथ बैठे तो, सुनीता बहन के साथ, मन बाद में अगर इन लोग बैठे तो जो भी डिसीशन हो फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपके साथ, और ये सेशन के बाद 10 मिनट ही आप उनके साथ आपस में एक ग्रुप बने, साइंटिस्ट का एक ग्रुप बने जिसमें आप रहें और ये लोग रहें। अभी हाँ जी, अभी बन जाएगा, ज्यादा नहीं है ना, तो फटाफट हो जाएगा। तुरंत दान हमेशा महापुण्य होता है। यहां से जाने के बाद जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे ना, तो माया भी बैठी है, दूसरे कामों में बिजी कर देती है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी चीज होती है जिससे 100 गुना चेंज होता है। अभी जैसे हमारी सुनीता पांडे जी ने बताया आप लोगों को अपनी फील्ड से जो एक्सपीरियंस है, और अभी तो ऊपर से भी यही आर्डर है कि भाई, और सबके मन में भी है कि भाई सभी को ऑर्गेनिक तो करना ही है क्योंकि भूमि बहुत बंजर हो चुकी है, वो तो सबको सेट माइंड हो गया है, लेकिन इसके साथ योग मिला है तो क्या होता है लाइफ में, वो एक बहुत सुंदर अनुभव है जो इस आंगन में आके आपने अनुभव तो किया होगा थोड़ा, और आप कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, आपको लगेगा कितना मजेदार जिंदगी है। तो अभी हम ये चाहेंगे कि बद्री भाई विशाल जी जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनके लिए थोड़ी कुछ प्रेरणादायक बातें बोलें।
ओम शांति। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और उसका प्रचार प्रसार कृषि के अधिकारी करते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना रोल है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में 39 साल सेवा करते हुए हो गया, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए 34 वर्ष हो गया। जीवन की शुरुआत किसानी से हुई, अपने हाथ से हल चलाने से हुई, और आज उत्तर प्रदेश में खास तौर से कृषि से जुड़े हुए अधिकारी यौगिक खेती के बारे में जानने लगे हैं, सोचने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं, और एक समय ऐसा था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो सत्य तो सत्य होता है, उसे असत्य के बादल ज्यादा समय तक ढक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो यौगिक खेती है, यौगिक खेती कोई ब्रह्मा कुमारी की इजाद की हुई विधि नहीं है, ये ऋषि मुनियों की पद्धति है, जो हमारे वेदों में वर्णित है वो पद्धति है। हम इसका श्रेय नहीं लेते हैं, हम अपने भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए जिस आधार की जरूरत है उस आधार को आपको याद दिला रहे हैं, किसानों को याद दिला रहे हैं, आपको अपनी शक्ति की याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमान जी को बल की याद दिलानी पड़ती थी, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साध रहा बलवाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाए। इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं इस बात को। कल एक मुख्य अतिथि जी जो बोल रहे थे, बात कह रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसानों के बीच में भ्रम हो गया है, उनके सामने स्पष्ट स्थिति नहीं जा पा रही है। सरकार ने भी पैदा किया और हमारे बीच के लोगों ने भी पैदा किया। पहले ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही थी सरकार, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही थी, उसके बाद परंपरागत कृषि पर आई और आज प्राकृतिक खेती पर आ गई। लेकिन जितनी भी पद्धतियां उन्होंने बताई वो सब भ्रमित करने वाली है। उसमें मूल बात उनके समझ में आ ही नहीं रही है कि जो प्रकृति के साथ प्रेमपूर्ण संबंध है वो योग के द्वारा स्थापित हो सकता है। बिना योग के, बिना उस जगत नियंता से प्यार के, उसकी रचना के प्यार से, ये संभव ही नहीं है कि हम स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकें। और ये कोई नहीं बताता है, वो प्रेमपूर्ण संबंध योग ही सिखा सकता है, योग ही स्थापित कर सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप यहां समझ रहे हैं और मैं समझता हूं इससे अच्छा स्थान आपको समझने के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसको व्यवहारिक धरातल पर लाना है। और जब हम अंदर से मजबूत होते हैं ना, क्योंकि जब इस क्षेत्र में हम आए तो लोग कहते थे कि यार रासायनिक खेती को तुम जो है विरोध करते हो, रासायनिक खेती के बिना तो भूखों मर जाएंगे लोग, अगर इसको नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। और फिर वो 1947 आजादी के बाद से कहानी बताना शुरू करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत की शुरुआत 1947 से हुई, इससे पहले भारत था ही नहीं। और हमने उन लेखों को पढ़ा, उन लेखों को ढूंढा जो बहुत दुर्लभ हैं, कि उस समय जो है जो हमारी प्राकृतिक, जिसको हम यौगिक नाम नहीं दिए थे, लेकिन वो उसमें संवेदनात्मक जुड़ाव शामिल था, प्रकृति से प्रेम जुड़ाव शामिल था। कैसे वो हल की पूजा, बैल की पूजा, धरती की पूजा और वाइब्रेशन देने के लिए लोकगीत गाना रोपाई के समय, और परमात्मा को अर्पित करके उस घर को अनाज को घर में लाना, फिर नवान करना, परमात्मा को भोग लगाना, उत्सव मनाना, सारी वाइब्रेशन देने की प्रक्रिया वो क्या है? योग ही तो है। प्रकृति से जुड़ाव, परमात्मा से जुड़ाव और उसके साथ खेती करना, योग ही तो है। और जीरो बेस एक पहले पद्धति लागू हुई और लोग इतने नाम के भूखे हैं, अगर उनका नाम ना लिखा जाए तो वहां वक्तव्य देने नहीं जाते हैं। हमारा नाम आना चाहिए, जैसे हमने इजाद किया है वही भगवान हो गए हैं। तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से बचाने की जरूरत है अपनी देश की भोली जनता को। और उसको पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो हमारी ऋषि मुनियों की पद्धति है, जिसको हमारी सुनीता दीदी ने बताया, वृक्ष आयुर्वेद आधारित। क्योंकि आज का इंसान आप देखेंगे तो उसमें स्वार्थ भरा पड़ा है, उसमें लोभ भरा पड़ा है, पूर्ण नहीं है। और उस समय के लोग जो है जो लेख लिखते थे, जो किताबें लिखते थे, वो भी किसी और को समर्पित करते थे, अपना नाम तक नहीं डालते थे। आप देखेंगे वो कहीं कबीर का नाम डाल देंगे, किसी और का नाम डाल देंगे, व्यास जी का नाम डाल देंगे, अपना नाम नहीं डालते थे। वो सेवक थे, वो समाज के लिए समर्पित थे, तो उनकी बातों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ऐसे स्वार्थी तत्वों को पीछे ढकेलने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी परंपरा को पुनर्जीवित करें, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें। उसी में सुख शांति निहित है और ये चीज आपको यहां से अंदर से मजबूत होकर जाना है, तभी आप हर फोरम पर अपनी बात को कह पाएंगे। मैं छोटे लेवल पर रह करके छोटा अधिकारी होते हुए हर फोरम पर इस बात को मैंने कहा और उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया। पूरे मंडल से 17 मंडल थे, 18 मंडल, 18 मंडल से 18 अभियान एक साथ निकले कि पूरे प्रदेश में एक साथ ये जन जागरण हो, और आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति सोचने लगा है कि ये पद्धति कहाँ तक उपयुक्त है और कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने अनुभव के आधार पर मैं जरूर ये बात कहूंगा कि आपको सफलता निश्चित है, क्योंकि परमात्मा द्वारा अपने ऋषि मुनियों द्वारा सुझाई गई ये पद्धति है और इसमें सफलता 100% है। आप दृढ़ निश्चय होकर के आगे बढ़ें, सफलता आपके चरण चूमेगी। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति दीदी और सभी भाइयों को ओम शांति। मैं जैसे एसडीओ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर आ, वैसे तो ये पीपीओ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है ये पीपीओ, पर सेम एसडीओ की है। जैसे मैं गांव में जाता था तो आजकल खेती को किसान जो है अपना मतलब वो मान रहा है बहुत ही अकीय, तो कुछ चीज नहीं है, खेती नहीं है, जमीन बेच बेच कर फौरन जाने लगे, कनाडा जाने लगे। मैं बहुत रोकता हूं उनको, मगर नहीं भाई यही रहना चाहिए। एक किल्ला जमीन, दो दो किल्ले जमीन बेच के फौरन जाने लगे, ये तो घाटे का सौदा है जमीन। तो अब ये देखे, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पेड़ लगाते थे, पहले आम का पेड़ लगा दिया, जामुन का पेड़ लगा दिया। हम छोटे बच्चे होते हम कहते थे चलो भाई आम खाने हैं खेत में, हम जाते थे हमें पता ये हमारा खेत है। आज जो है यंग जो जितने भी 18-20 साल के बच्चे हैं उनको अपने खेतों का नहीं पता। जैसे मेरी नॉलेज है, मैं गांव में जाता तो नहीं ये नहीं पता था हमारा खेत कौन सा है। तो जागरूकता भरने के लिए सभी का एक प्लेटफार्म पर किसानों को लाना, उनको बताना, ये बहुत अच्छा वो है। और मैं फील्ड का ही अफसर रहा हूं, हमेशा गांव में जाता बताता उनको। तो ये चीज है जी, यदि 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 एक गाय देसी गाय किसान बांध लेता है तो 30 एकड़ जमीन का वो मतलब भरण पोषण कर सकती है एक देसी गाय। कोई चीज नहीं चाहिए दोबारा जो है। जैसे दूसरी चीजें हैं हमें उनके भी देखो, योगी खेती में बढ़िया बता रहा हूं, योगी खेती के साथ साथ में दूसरी अपनी जमीन को बनाने के लिए उनको दूसरी चीज देनी पड़ती है। तो हाँ, योगी खेती के साथ साथ में
जी हाँ समझ गए, थैंक यू सो मच।
अच्छा ओके जी, ओके जी।
यू वांट टू से समथिंग सिस्टर, या प्लीज जस्ट टेल इन द जिस्ट, प्लीज कम ऑन, कम टू मी।
ओम शांति, सभी को प्रणाम। अभी अब हम सब जने यहाँ पे एक नैसर्गिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है, अब आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2015 से अपने आप पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्होंने परंपरागत कृषि विकास योजना लाई। अब लोगों को धीरे धीरे ये पता चलने लगा है कि रासायनिक खेती से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे अपने पंजाब जो है, पंजाब का जो कैंसर मेल वैसे आती है, वैसे भी महाराष्ट्र में भी जो कोल्हापुर का एक जो शिरोड बेल्ट है वो, मतलब जनजागृति अब सब जगह हो चुकी है कि रासायनिक खेती कितनी ये है। अब रहा बात तो यौगिक खेती का, हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, ये सब स्कीम्स अपने यहाँ पर है। बस हम लोगों को इतना सोचना है कि इसो अपने यौगिक खेती को उसमें डालना कैसा है। जनरली अगर कोई साइंटिफिक बेस नहीं रहा तो लोग नहीं सुनते हैं, तो अगर यूनिवर्सिटीज इसमें अगर इन्वॉल्व हो गई और केवीके के माध्यम से अगर हमको जहां जहां अगर ये प्रचार प्रसिद्धि हुई कि ये पूरा पुराना तरीका है, पूरा साइंटिफिक है, तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये बहुत ईजी जाएगा। और दूसरी एक बात जो है कि जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स वगैरह जो रहती है, अगर उनको जितना ज्यादा हमने इसमें इन्वॉल्व किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। महाराष्ट्र में ऐसे प्रयास शुरू है और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी लोगों को आए हैं। तो एक ही हमें बस एक प्लान करना पड़ेगा कि जो जितने भी सेंटर से हम सब मिलके ये सब प्लान बना के कर सकते हैं।
शॉर्ट में जी
मैं बहुत कम समय में बताऊंगा। मैं महाराष्ट्र परभणी से हूं। वहां जो सेंटर है वहां के बहन जी का काफी प्रयास इस दिशा में है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, उनके सहयोग से इन्होंने कुछ प्रोग्राम भी लिए हैं, कुछ रिजल्ट भी मिले हैं और वो रिजल्ट भी पेपर के माध्यम से उन्होंने लोगों तक लाए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है वो थोड़ा वीक है। मेरा ऐसा सुझाव रहेगा कि उस सेंटर को फॉर्चुनेटली कुछ साइंटिस्ट है, कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स है, तो इन्हें हमें इकट्ठा करके बेस मतलब फार्मर लेवल पे जाना जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे जाना जरूरी है। जब तक हम वहां तक नहीं जाएंगे आपका रिसर्च भी वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि योगिक का रिजल्ट उन्होंने कुछ परसेंट ज्यादा बताया है, लेकिन हम जब तक फार्मर के लेवल पे नहीं जाएंगे। और मेरा पर्सनल सुझाव ऐसा है कि हमें इस योगिक खेती के बारे में पहले किचन गार्डन बोलो या पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स के बारे में रुचि लेकर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे हेल्थ जो अवेयरनेस है और हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में हमको उन्हें जागरूक करना जरूरी होगा। बस यही मेरा यहाँ से आपको सुझाव।
ग्रह वाटिका के थ्रू हम लोग वो कार्य कर रहे हैं, ग्रह वाटिका।
हाँ बराबर है,
घर में
वो लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम दीदी जी
उसने, तो हम लोगों ने आपको स्पेशल बुलाया इधर।
बराबर है,
सहयोग
देंगे। नहीं बराबर है, लेकिन ये मेरा कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मैं वहां पर भी सुझाव दे चुका हूँ कि लेट ऑल बहन जी कलेक्ट एंड लेटर्स हैव सम symposium like this and let us have a discussion and those who are interested they will come forward.
That's the reason we had elected all of
yeah,
you.
Yeah, yeah, that's true. So
how come we this is really
this is the scenario what at the ground level that I was interested to.
We want you to be a wing.
Thank you. Thank you.
Thank you so much. Okay.
ओम शांति। वैसे हमारे जो राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी गुजरात में जो है उन्होंने ये प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत जोर से एक साल से अभियान चल रहा है, और हमारे गुजरात में जो चार कृषि विश्वविद्यालय है उसमें से मैं आनंद में से हूँ, और आनंद में जो हमारे साइंटिस्टों की जो एग्रेस्को मीटिंग होती है पूरे सभी साइंटिस्टों का, तो उसमें करीब हमारे 26 रिसर्च स्टेशन है, उसमें से 12 रिसर्च स्टेशन पे अभी नेचुरल फार्मिंग के ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं अलग अलग क्रॉप पे। पल्सिस है, मक्का है और ऑयल सील्स भी है, तो अलग अलग क्रॉप पे ये एक्सपेरिमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें यौगिक खेती ऐड नहीं है। तो इसके बारे में अभी जो बहन जी ने जो बोला कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो पर्टिकुलरली सारे देश में फार्मर्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रोनोमिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, हर एक डिसिप्लिन की हर एक फैकल्टी जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में होती है। माना हर एक प्रकार की जो तालीम है वो फार्मर्स को वो लोग देते हैं सारे गुजरात में, और हमें सारे गुजरात में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो हमारा जो ये प्रभाग है, ये प्रभाग की ओर से एक लेटर जो है हर एक कृषि विज्ञान केंद्र को, इसके पहले हमारे चारों यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर या डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है उनके साथ एक लेटर जाए कि भाई आप नेचुरल फार्मिंग के तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो, तो उनके साथ साथ यौगिक खेती को भी जो है उसमें शामिल रखो तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी 2019-20 में मक्का के क्रॉप पे हमारे हाउस में एक्सपेरिमेंट पास हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट मैंने लिया और केमिकल फर्टिलाइजर, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और यौगिक खेती, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमारे पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर एनसी पटेल साहब जो हमारे राजेश भाई दवे के साथ पढ़ते थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने योगिक खेती में मक्का देखो और रासायनिक के बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस था, और उसका डेटा भी मैंने लिया, सभी प्रकार के ऑब्जर्वेशन लिए और हाउस में पेश किए और इसमें एटपा रिजल्ट मिला है, माना केमिकल फर्टिलाइजर के साथ योगिक के समकक्ष रिजल्ट है।
थैंक यू सो मच। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम जो
जैसे प्रूफ बहुत अच्छा है, फिर भी ये मैंने रिजल्ट किया तो भाई उन्होंने पुनः समीक्षा करने के लिए बोला है, अभी भी इस रिजल्ट का पुनः समीक्षा
तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हमारे बीके फार्मिंग में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे करेंगे जो साइंटिस्ट बैठे? यस प्लीज।
ओम शांति।
ओम शांति। उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा देश है, जहां पर 9 एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारे यहां रीजनल एग्रीकल्चर टेस्टिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेशन है। देखिए, जो भी नई विधियां हैं, प्रसार कार्यकर्ता को जब तक हम ट्रेंड नहीं करेंगे, हमारा जो प्रसार कार्यकर्ता है जो किसानों से सीधे जुड़ता है, उसको दो तरह से मैसेज जाता है। एक जो हमारी एसएयूज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिसर्च बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर पांडे बैठी हैं, निश्चित रूप से हमारे जो आरएटीडीएस हैं, जहां पर हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस वाइज विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग, चाहे वेराइटल टेस्टिंग हो, चाहे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की हो, चाहे एंटोमोलॉजिकल हो, इनको हम टेस्ट करते हैं, उनको हम रिकमेंड भी करते हैं, जिससे हमारे प्रसारकर्ता वहां जाकर करते हैं। अभी एनसीओएफ ने जिसको आप मैडम आप चर्चा कर रही थी कि आप लोगों ने उसकी कमेटी में थी, वो फाइनल हुआ है। निश्चित रूप से अभी यदि वह डिटेल आ जाए कि हम यह किसान अपने वर्कर को बता पाएं कि भाई आप इतना मात्रा में जीवामृत, घन जीवामृत या जो मंत्र हैं, जो यौगिक में जो जिन मंत्रों को पढ़ना है, यदि ये चीजें हम लोगों को इसका लिटरेचर डेवलप होकर के मिल जाए, जो हम अपने वर्कर्स को दे सकें, जिनको हम मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप कर सकें, तो अधिक अच्छा रहेगा। साथ ही मेरा अनुरोध होगा कि जो यौगिक खेती जिसकी बात हम कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग से थोड़ा सा आगे उसी को जोड़ दिया जाए, तो यौगिक खेती की बात आ रही है, तो क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, उन ट्रीटमेंट्स को यदि आप हमें बता दें, जिससे कि हम अपने आरटीडीएस पर इसको 2-3 वर्ष, क्योंकि विभिन्न वर्षों में अलग अलग तरह की वर्षा, अलग तरह की सिचुएशन पैदा होती हैं, तो यदि हम उनका ट्रायल करा करके यह डेवलप कर दें, तो शायद जल्दी से इसका हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि यौगिक खेती को इसको प्रचार करना है, तो इसके ट्रीटमेंट बना करके कुछ, क्योंकि आप तो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बेटर जानती हैं, तो कौन से किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में हमें क्या किन चीज को टेस्ट करना है, 2-4-10 यदि इसका बन जाए और उसको हम लोग टेस्ट कराना शुरू कर दें, तो यह अधिक अच्छा रहे, जिससे कि अधिक प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद।
सेशन 4:30 बजे से हमारा शुरू है और वहां से आ गया बुलावा, तो लेकिन मैं नटशेल में, आप यौगिक और इसकी बात कर रहे हैं नेचुरल की, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने साल हो गए आपको अपने स्टेट में कराते हुए?
दो चीजें आर्गेनिक फार्मिंग, एक आया जो वर्मी कंपोस्ट के बेस करके लोगों ने शुरू किया, वर्मी कंपोस्ट के कॉन्सेप्ट में भी कुछ दिक्कतें थी जिसको उन्होंने किया है, और ऐसा नहीं सफलता मिली, जिन किसानों ने किया है उन्हें सफलता मिली, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
वही मैं कह रही हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको दसियों साल हो गए, गवर्नमेंट ने जिसको संस्तुत कर दिया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर लिए सारा कुछ, लेकिन आज अगर मैं किसी भी विश्वविद्यालय से एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्रॉप वाइज प्रैक्टिस मांगू, तो आप यौगिक फार्मिंग में अभी कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यौगिक फार्मिंग हमारी है, प्राचीन है, वैलिडेट भी होनी है, वैलिडेशन भी इसका चाहिए अभी। हाँ, तो अभी कृषि विभाग को अभी ऐसी रेडीमेड आपको रेसिपी नहीं है,
उसके लिए। लेकिन मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, जो आपके यहाँ बुकलेट बनती है एक, जिसमें कि वो रिकमेंडेशंस जो विश्वविद्यालय से डिस्कस होकर जाती हैं वो आप किसानों को देते हैं। हाँ, सघन पद्धति, खरीफ की सघन पद्धति और रबी की सघन पद्धति, जायद की। तो अभी वो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन आप अपने यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ ट्रायल्स होते हैं, फार्मर्स फील्ड ट्रायल्स विश्वविद्यालयों में, तो विश्वविद्यालय ले सकता है। हाँ हाँ, वहाँ हो सकता, वहीं करने की जरूरत है। अभी वो आपके सघन पद्धतियों वाला अभी नहीं आता।
नहीं, मैं बद्री भाई का जब क्लास सुन रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली बद्री भाई ने, कि प्यार और आभार, प्यार और आभार, ये दो हमारी वैलिडेशन है। जितना आप प्रकृति से प्यार, देखो एक बार मैं रोम में गई, तो रोम में एक भाई है डॉक्टर भाई, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ उसके साथ का, वो उसको हमने यौगिक खेती के बारे में थोड़ा उसने सुना था, तो उसने मुझे एक्सपीरियंस बोला कि मेरा प्लांट मर रहा था बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, रोज सुबह एक मिनट उसको बड़ा प्यार से योगदान दिया, एक ही मिनट, और उसने वो प्लांट जिंदा हो गया। अभी इसका क्या वैलिडेशन दे मैम। और मैं एक एक्सपीरियंस जो मैंने अपने ये रूरल विंग के मीटिंग्स में और इसमें अनुभव सुनाते ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम बातें कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी जिसने किया है। एक हमारा सेशन चल रहा था, उसमें एक भाई थे, वो उन्हों की जो है ना गाय दूध देना बहुत कम कर दिया, तो उसको नुकसान होने लगा, काफ़ी नुकसान में था। अब वास्तु वाले आते, कोई और आते, जादू टोना वाले, अरे तेरे गायों को जादू हो गया है और तुम्हारा वास्तु गलत है, तो उसको इतना इतना पैसे से, देखो ये इसको चेंज करो, ये चेंज करो, काफ़ी उसको कॉस्टिंग बताए। बोला पहले ही मैं लास्ट में हूँ, अभी ये पैसे के लिए फिर लोन लूँ, तो वो इस विभाग से जुड़ा और उसने ये समझा कि भाई कैसे हमारे आत्मा के अंदर, अभी हम सब ओम शांति तो बोलना सीख गए, ओम शांति बोलना सीख गए ना, हम सब सीख गए, तो ओम शांति माना मैं, ओम माना मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म क्या है, शांति है। इस आत्मा के सात गुण हैं, आज के लेसन में आपने ये भी सुन लिया होगा। तो उसने क्या किया भाई जी, उन्होंने किया कि भाई अपने गाय को प्यार करना शुरू किया, कुछ नहीं करता था, रोज जाके अपने गाय भैंसों को सिर्फ हाथ घुमाता था, बड़े प्यार से, हाँ दिल से प्यार दिया उसने। हम सबको मालूम है हमारे घर में जो पौधों को पानी देता है ना, वो चले जाए तो पौधे थोड़े मुरझाना शुरू हो जाते हैं, हम सबका अनुभव होगा कहीं ना कहीं। हमारे घर में पैट होते हैं, तो ये क्या है, अब इसकी वैलिडेशन कौन देवे भाई साहब। ये है प्रकृति से प्यार, जैसे उन्होंने बोला ना, पहले हम पूजा करते थे, पहले हम मतलब रेस्पेक्ट देते थे, तो ये जो गुण है ओरिजिनली, ये जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी मेजरमेंट नहीं होती है। मेरे हिसाब से ये मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, फिर भी हमारे बड़े इस पे थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि बड़े प्रकाश डालें। ओके बद्री भाई, यस यस डेफिनेटली यस।
तो इस तरह से हम लोग हमारे ऊपर हम लोग करके इसको
फिर भी आपका जो क्वेश्चन है उसका हमारे बद्री भाई रेस्पॉन्स करना चाहेंगे।
नहीं, डॉक्टर साहब को पता है, हमारा डिस्कशन होता रहता है और वहाँ पे आपके संस्थान में ट्रेनिंग के लिए मैं कई बार जाता हूँ। बात यह है कि इस समय जो रिसर्च की बातें चल रही हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति की भावना, और जो वैज्ञानिक है अगर उसकी भावना इस तरह की नहीं है तो कितना भी रिसर्च करेगा फेल करेगा। तो इसमें जरूरत है कि जो हमारे बी के फार्मर हैं, जो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, आप हमारे खेत में रिसर्च करिए, तो कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी साइंटिस्ट हैं वो वहां पर पहुंचे, वहां पर रिसर्च करें, तब उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये बात रही, दूसरी बात यह है कि अनुभव ही सत्य है, विश्वास अंधा है, आप विश्वास मत करिए, अनुभव करके, जो हमारे किसान हैं उन्होंने अनुभव किया है, आप प्रयोग करके अनुभव करके देखिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता।
और अगर हम इस रिसर्च और उसके रिजल्ट के इंतजार में बैठे रहेंगे तो अभी तक जितना नुकसान किया उसका कई गुना और नुकसान कर देंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है उस अनुभव के आधार पर। ओम शांति।
तो इसलिए दीदी मैं चाहती हूँ कि ये जो साइंटिस्ट हमारे भाई हैं वो हमारे योगिक फार्मिंग माने योगिक जो बाइबा के बच्चे फार्मर्स हैं उनके वहां पे रिसर्च करें, तभी आप दूसरों को रिजल्ट बता सकते हैं। ये मेरे को लग रहा है कि ये अगर हम लोग प्रैक्टिकल करें, वो नेचुरली बीके होगा तो पॉजिटिव होगा ही नहीं, फिर भी पहले वहां से शुरू करें ताकि हम रिजल्ट, आप लोग रिजल्ट बता सकें दूसरों को। साइंटिस्ट को रिसर्च चाहिए और रिसर्च साइंटिस्ट बोलेगा ये राइट है तो सब मानेंगे। तो अभी हाँ जी, तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे मंच पे हमारे बड़े हैं, हम इसके थोड़ा इस बात के लिए थोड़ी हमारे को शुभ भावनाएं दें और उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो हम हाँ जी जा रहे हैं। ओके ओके जी 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 आपका वहां पे रिसेप्शन। थैंक यू फॉर कमिंग। सो सला दीदी से मेरा नम्र निवेदन।
ओम शांति। परमात्मा की इस दिव्य अवतरण भूमि पर आप सभी परमात्मा के दिव्य और विशेष आत्माओं का आगमन हुआ और दो दिन से आप उस परमात्मा की एक सूक्ष्म उपस्थिति और शक्ति का अनुभव कर रहे होंगे। ऐसे शुद्ध और शक्तिशाली वातावरण के अंदर आज इस रिट्रीट में से विशेष हमारे वैज्ञानिक और हमारे कृषि अधिकारी उन दोनों को यहाँ एकत्रित कर एक छोटे से गेट टुगेदर का आयोजन किया। इसका लक्ष्य ये है जो अभी हम चर्चाएं भी कर रहे थे, उस चर्चा का सार निष्कर्ष, हम अब तक की जो केमिकल खेती उसके प्रति लोगों में जागृति आ गई है कि वो विष है। पहले लोगों को जागरूक करना पड़ता था कि विष मुक्त खेती करो। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि किस दिशा में हम अपने किसानों को प्रेरित करें। अभी की चर्चा के सार में ये निकलता है कि वास्तव में जो हमारी प्राचीन प्राकृतिक कृषि पद्धति है वही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। प्राचीन में क्या था, जो अभी भाव भावना की बात चल रही थी, उन सब के अंदर मां धरती मां गऊ समाज की जो उनकी बहने उनके प्रति मातृत्व भाव था। उस मातृत्व में प्यार और वात्सल्य ये दोनों चीजें समाई हुई हैं। हमें अपने किसानों को सबसे पहले ये जागृति लानी है, उनके जो विचार और भावनाएं हैं उनमें परिवर्तन, और उस परिवर्तन का जो केंद्र बिंदु है वो मात्र आध्यात्मिकता है। प्रभाग ने इस थोड़े समय के अंदर जो जो प्रोजेक्ट किए हैं और उनकी जो फलश्रुति हमें प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं ये कह सकती हूं कि अभी हम एक निष्कर्ष करें कि ये प्राकृतिक खेती, साइंटिस्ट तौर पर आपको जो जो टेस्टिंग करने हैं वो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले हम अपने किसानों का जो इस प्रभाग का भी लक्ष्य है संस्कार शुद्धिकरण। जहां भी हमारे किसानों की ट्रेनिंग चल रही है जिस भी लेवल पर, हम पहले उनके संपर्क में आकर के उनके मन में जागृति लाएं, और जब उन किसानों में जागृति आएगी तब योगिक खेती क्या है आप ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले है संस्कार शुद्धिकरण, जो अभी कहा कि अगर उनके अंदर में भावना ही नहीं है स्वार्थ भावना है, ईर्ष्या और नफरत है, तो हम उस खेती को नहीं करा सकते हैं। तो बीके जहां भाई बहने हैं वहां भी हम रिसर्च करेंगे, लेकिन जो नॉन बीके हैं उनको भी तो हमें सशक्त बनाना है ना। तो पहले उनके सशक्तिकरण के कार्यक्रम रख करके फिर उन्हों को ही ट्रेन किया जाए। जैसा आपने भाई सब ने पूछा कि उसकी जो विधि है वो हम लोगों को दी जाए, सुनीता बहन ने कहा हमारे भाव उसका कोई मापदंड नहीं होगा, वो राइट बात है। फिर भी उसकी जो टेक्निक है कि हम जो वाइब्रेशंस देते हैं, मैं खुद अपने आप को आत्मा समझ करके उस परमात्मा से प्रकृति को पवित्रता के प्रकंपन दे रहे हैं, वो हमारे पास में छोटी छोटी अलग अलग कॉमेंट्री के रूप में है जिसको हम प्रिंट करके उनों को देते हैं और उसका वो लोग प्रयोग करते हैं जिससे उसमें परिवर्तन आता है। तो आज की सभा से ये एक बात निश्चित है कि अब हमें अपनी प्राचीन कृषि पद्धति को, उसको प्राकृतिक खेती कहें लेकिन योगिक ऐड करते हैं। योग पॉजिटिव थॉट्स है, माँ धरती से प्यार है, उस पराभौतिक शक्ति के साथ में हमारा संबंध है जिसका प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, राइट है। इस बात को हम सभी साइंटिस्ट और हमारे कृषि अधिकारी स्वीकार करते हैं कि ये एक वास्तविक सत्य है। अब इस सत्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आप और हम, प्रभाग और आप सभी, जैसे हमारे बद्री विशाल भाई ने इस चीज को समझा और उन्होंने आप सभी के समक्ष रखा, आप सब भी वो बुद्धिशाली वर्ग हैं, उसकी वास्तविकता और महीनता को आपने समझा, तो आज हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर में एक संगठन तैयार हुआ है। ऐसे ही अन्य स्टेट के अंदर भी कई अधिकारी अलग अलग स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, गुजरात से भी हैं, हम उन संगठनों को मजबूत बनाएं, फिर ये संगठन आपस में मिलकर के किसानों को भी प्रेरित करें। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से जो कार्यक्रम है वो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे कल देखा कि हमने दांतीवाड़ा के साथ में एक एमओयू किया। दूसरा हमारा आज जो एक ये सजेशन आया कि जो किसान बीके हैं उनकी खेती पर भी आप साइंटिस्ट जाकर के रिसर्च करें, तो वो भी एक रिसर्च होगा कि वहां का रिजल्ट क्या है और इस स्थान का रिजल्ट क्या है, कंपेयर कर सकेंगे। तो कुछ को हम अप्लाई करें। हम ये चाहते हैं कि जब इतने अच्छे आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं तो ऐसी कुछ योजना बना करके यहां से जाएं जिसको हम अपने स्टेट के अंदर में अप्लाई कर सकें। आत्मा के भी हमारे काफी भाई बहने डायरेक्टर और ये सब हैं, इन्हों के पास में भी किसान इकट्ठे होते हैं, तो जब वहां उन्हों की ट्रेनिंग हो तो ये योगिक खेती के लिए विद्यालय की तरफ से इनवाइट किया जाए और उन फार्मर्स को ट्रेन किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज को आरंभ करने में मेहनत होती है, बाद में उसका परिणाम, जैसे कहते हैं ना, लखपति बनने में समय लगता है, करोड़पति बनने में समय नहीं लगता है। तो ये भी एक स्टार्टिंग पीरियड है जिसमें हम आप सबको मिलकर के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट तो है ही है क्योंकि ये वास्तविकता और सत्यता है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी भी अपने संस्थानों में इसके ट्रेनिंग के कार्यक्रमों का और साथ ही साथ जो रिसर्च करने की है उसको भी आप इस प्रभाग के भाई बहनों के साथ में मिलकर के करते रहेंगे, और हम अपने किसानों को ना इसमें प्रभाग का स्वार्थ है न व्यक्तिगत स्वार्थ है, देश समृद्ध बने, किसानों के जीवन में खुशहाली आए, ये हम सब की एक विशाल श्रेष्ठ भावनाएं हैं, तो जरूर वो पूरा होगा। और खूब खूब दिल से आप सभी का आभार और शुक्रिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास समय की मर्यादा है, आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो आप हमें देंगे और उन सुझावों के आधार पर भी हम आगे के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सी प्रेरणाएं सहला दीदी ने आप सबको दी और आप सबके भी बहुत सुंदर विचार सुनने को मिले। मेरे अंदर एक शुभ संकल्प आ रहा है कि जो कुछ हम दूसरों को कहना चाहते हैं पहले हम खुद करें। अगर हम करेंगे तो फिर कहने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें एक ही बात सिखाई है कि जो तुम दूसरों को बता रहे हो पहले खुद करके देखो। तो आप सभी भले किसान नहीं हैं, अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन पेड़ पौधों से, वनस्पति से, पशु पक्षियों से प्यार तो सबका है ही। तो थोड़ा सा अपने अपने घरों में दो गमलों पर प्रयोग करके देखो। अपने पास एक छोटा सा फार्म बना करके उस पर प्रयोग करके देखो। आज इस प्रोजेक्ट को सुन करके मैं आपको बताऊं, मैं अभी अमेरिका के टूर पर था। इस विद्यालय के जितने बीके भाई बहने हैं उन्होंने किचन गार्डन बनाया है और यही सीजन होती है जब वहाँ पर धूप निकलती है, बाकी तो बर्फ पड़ती है। और सभी के किचन गार्डन में मेरे को लेके गए। कहीं पर इतने सुंदर मटर थे, टमाटर थे, भिंडी थी, धनिया, मेथी, पालक थी। कहते हम कोई दवाई नहीं डालते भाई, आप लोग जो कहते हो योग करो, हम योग करते हैं और ये हमको मिलता है। तो ऐसा तो आप सभी करके देखेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, अनुभव है। और अनुभव के आधार से आप सब जो भी कहेंगे लोग मानेंगे, तो कथनी और करनी हमारी समान हो जाएगी। यही शुभ भावना है। ओम शांति।
तो समाप्त करेंगे परमात्मा की याद से, फिर हम अपने सेशंस में वापस जाएंगे। ओम शांति।
अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। अपने साथ है, डरने की क्या